शांति। दीदी, हमारे मुंबई महानगर से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। बाल्यकाल से ही आपको मम्मा बाबा की पालना पाने का सौभाग्य मिला और फिर आप ज्ञान में पलते रहे, बड़े होते रहे। 1969 में अपनी लौकिक पढ़ाई साइंस में ग्रेजुएशन की एग्जाम्स दी और बिना रिजल्ट का इंतज़ार किए आप मधुबन में आ गए टीचर्स ट्रेनिंग की और फिर बाबा ने आपको विभिन्न स्थानों पर सेवा अर्थ भेजा, जैसे कि राजकोट, बेंगलोर, हैदराबाद, नेपाल, अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि देश और विदेश के स्थानों पर आप सेवा अर्थ गए और जाकर बाबा के बच्चे निकाले, सेवा केंद्र स्थापन करने के निमित्त बने और 1976 में मधुबन में आए तो दादियों ने, बाबा ने आपको एक गोल्डन लॉटरी दी मधुबन निवासी बनने की। तो 1976 से लेकर आज दिन तक आप इस हेडक्वार्टर पांडव भवन में रहकर अपनी सेवाएं, वर्तमान में जो अलग अलग कैंपस हैं, सभी कैंपसों में देश और विदेश में अपनी सेवाएं देते हैं। 75 से भी अधिक देशों का भ्रमण करके बाबा का संदेश विश्व तक पहुंचाया है। वर्तमान में आप हमारा जो राजयोग शिविर है उसके डायरेक्टर हैं और हमारा जो ये एजुकेशन विंग है उसकी आप वाइस चेयरपर्सन हैं और इसके साथ साथ मधुबन में चलने वाली भट्टियों के आप कोऑर्डिनेटर हैं और जब विदेशी आते हैं तो उनके प्रोग्राम्स के कोऑर्डिनेटर। और मूल रूप से तो अभी हम ये कहेंगे कि जिन दादियों की, बाबा मम्मा की पालना लेकर आज इस स्वरूप तक आप पहुँचे हैं और आज जब वो मम्मा बाबा दादियाँ अव्यक्त हो गई है तो वो रिटर्न पालना सभी को देते हैं। यहाँ आने वाले हर ब्राह्मण वत्स को वो फीलिंग देते हैं, उस पालना का, आध्यात्मिक पालना का अनुभव कराते हैं। तो हम सबके बीच में हमारी आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी हैं। हम एक हाथ हिलाकर दीदी का खूब स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सुनते हैं उनसे आज की भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य। तो दीदी, वरदान, सॉरी, दुआएं, आशीर्वाद और वरदान, इनकी स्पष्टता प्रदान करते हुए भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य हम सबके सामने रखेंगे। सुनते हैं दीदी को, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। प्यारे बाप दादा, दादियाँ, सर्व मधुबन निवासी भाई बहने और मेरे तरफ से भी आप सभी बिदर और स्थानों से आए हुए भाई बहने, मधुबन तपोभूमि में, वरदान भूमि में, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि में, परिवर्तन भूमि में बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मधुबन बेहद घर में तो सब आना चाहते हैं, यहाँ भट्टी करना चाहते हैं, लेकिन मधुबन ये पांडव भवन तो बहुत बड़ा नहीं है शांतिवन की तरह, इसलिए इसकी भी लिमिट है। और हम कहते हैं जो भट्टी में पहुंच चुके वो बहुत 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 भाग्यशाली है। तो अपने भाग्य की भी तालियां बजाओ। इस समय तो जैसे सूक्ष्म वतन का वातावरण है, बरसात के मौसम में ऐसा अनुभव होता है, तो हम सूक्ष्म वतन में विचरण कर रहे हैं या सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ सूक्ष्म फरिश्ता बन करके हम घूम रहे हैं, यही अपने आप को समझना। यहाँ तो बहुत बड़ा आपको इस भट्टी का उद्देश्य मिला, लक्ष्य मिला, सबको बैज मिल गया होगा ना, तो बैज में आपने पढ़ा होगा क्या है इस भट्टी का नाम, क्या है इस भट्टी का नाम, योग तपस्या भट्टी संपन्नता की ओर, ऐसा ही ना। तो हम सबको संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, फरिश्ता बनना है, बाप समान बनना है, संपूर्ण पावन बन करके घर जाना है, फिर देवता बन करके सतयुग में आना है। बाबा ने बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है, अब उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा क्या क्या पुरुषार्थ होना चाहिए। हर मुरली में बाबा हम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ की बातें बताते हैं, प्यार भी बहुत देते हैं, फिर सावधान भी हमें करते हैं, साथ साथ श्रीमत भी देते हैं, बच्चे क्या करो क्या न करो। और अगर हम उस श्रीमत का पालन करते हैं तो हम स्वयं भी स्वयं को दुआएं देते हैं और भी हमको दुआएं देते हैं और बाबा भी हमें दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। तो यही आज का विषय है, दुआएं, आशीर्वाद और वरदान। ये जीवन में अगर मिल जाए तो यह जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बन जाए। तो दुआएं कैसे मिलती है और हम दुआएं कैसे देते हैं, क्या है दुआएं और आशीर्वाद और वरदान में अंतर, क्या समानता है, वो हम थोड़ा सा समझेंगे। वैसे भी कहा जाता है दुआ दो दुआ लो, तो दुआ दो भी और दुआ लो भी। दुआ देना वो हमारे हाथ में है, हम किसको दुआ देते हैं, पर दुआ लेना उसके लिए मेहनत है, क्योंकि ऐसे ही कोई दुआ नहीं देगा। तो हम कैसे दुआ ले भी और दे भी, दुआ हम कैसे देंगे, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रख करके। बाबा कहते हैं कैसी भी आत्मा आपके सामने आए, आज भी बाबा ने वरदान में कहा आपको गाली दे, हाँ आप पर आपके आपको अपशब्द कहे, कुछ भी कहे, आप उनको रिटर्न में वो अपशब्द नहीं कहो, आप उनको दुआ दो। पहले ट्रकों के पीछे लिखा रहता था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो अगर हमने बुरी नजर रखी तो दूसरा हमें बद्दुआ देगा कि तेरा मुंह काला। लेकिन एक ट्रक के ऊपर हमने ये भी पढ़ा, बुरी नजर वाले तेरा भी हो भला। तो भले उसने मेरे ऊपर बुरी नजर रखी, लेकिन हमने उसका भलाई सोचा, बुरा नहीं सोचा, तो तेरा मुंह काला नहीं कहा, लेकिन क्या कहा, तेरा भी हो भला। कोई गाली बोले, कोई अपशब्द कहे, हम उनके ऊपर फूलों की वर्षा करें। कोई गुस्सा करे और हम उस आत्मा के प्रति शुभकामना रखें, ये उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। अब कोई गाली दे और हमने भी गाली दी, ये तो कॉमन बात है। हम मिसाल देते हैं, कई बार हम उसने तो एक शब्द का हम 10 शब्द बोलेंगे। हम किसने मुझे कहा तुम मूर्ख हो, तो हमने तुम मूर्ख हो ये सुना, यू आर स्टूपिड, तुम मूर्ख हो, तो हमको गुस्सा आ गया। ये मुझे मूर्ख कहता है, क्या समझता है ये अपने आप को। तो मैंने रिटर्न में उसको क्या कहा, तुम महामूर्ख हो, तुम महामूर्ख हो। उसने तो केवल मूर्ख कहा, लेकिन मैंने महामूर्ख कहा तो उससे भी ज्यादा। हाँ, जैसे ताश के पत्ते खेलते ना, तो हम किसी एक ने नैला फेंका 9, तो दूसरे ने उस पर 10 डाला, माना वो 9 को हरा दिया। लेकिन जब उसने मुझे मूर्ख कहा और मैंने उसको महामूर्ख कहा, इसका पहला अर्थ ये निकलता है कि मैंने स्वीकार किया कि मैं मूर्ख हूं। समझा, मैं मूर्ख हूं ये स्वीकार किया, तभी तो मां मूर्ख का। अगर मैं स्वीकार ही न करूं तो मां मूर्ख कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया तो हमको रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो कैसे हम रिएक्ट न करें, उसके लिए क्या मन में सोचें? क्योंकि उसने तो चलो अब शब्द का कुछ भी का उसका कर्म बना, लेकिन मैंने अगर रिएक्ट किया तो मेरा तो डबल कर्म बना। फिर उसने उसका रिएक्शन ले किया तो उसका और आगे विकर्म बना। फिर मैंने कहा तो उसका मेरा तो 4 गुना विकर्म बन गया। अब विकर्म ही करते रहेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे। एक मिसाल मैं देती हूँ, मैं छोटी थी बहुत, स्कूल में पढ़ती थी, तो मेरी एक सहेली थी, स्कूलमेट थी, अब दूसरी बिल्डिंग में रहती थी और उनके फादर की नीचे शॉप थी। अब उस एक दिन अखबार में आया 1 पैसा मर्डर, 1 पैसा मर्डर। तो मैंने कहा ये क्या 1 पैसा मर्डर, तो फिर हमने अंदर अखबार वो न्यूज़ पढ़ी, तो वो जो मेरी फ्रेंड थी उसके पिता, उनकी दुकान जो थी उसके बारे में न्यूज़ थी कि कैसे वहाँ मर्डर हो गया, 1 पैसे पर उनके पिता ने मर्डर कर दिया। और क्यों 1 पैसा, क्योंकि उस समय अभी इंट्रोड्यूस हुए थे नए पैसे, 100 न्यू नया पैसा 1 रुपए में, और पुराने पैसे थे 16 आना 1 रुपए में, जो पुराने वो जानते हैं। तो 16 आना 1 रुपया माना 4 आना 1/4, और उस हिसाब से नए पैसे देखेंगे तो 25 पैसे, 25 पैसे होता है 4 आना। तो उस समय तो बहुत सस्ता ही थी ना, तो कोई ग्राहक आया, उसने 2 आने की चीज ली, 2 आना, और दुकानदार ने उसको 12 पैसा वापस किया। अब वो ग्राहक गुस्सा करने लगा, हमने आपको 25 पैसा दिया और 12 पैसे की चीज मिली तो मुझे 13 पैसा दो। समझ गए, 13 पैसा, क्योंकि 12 पैसा की चीज लिया और 25 पैसा दिया, तो 1 पैसे की भी वैल्यू तो थी उस समय। तो 13 पैसा दो। उसने कहा नहीं, 12 पैसा दो आने में होता है, और तो दो आना का चीज लिया, दो आना वापस, माना 12 पैसा वापस। अब इतना लड़ने गए, इतना लड़ने लग गए, जो गुस्सा आया ड्राइवर वो दुकान वाले को, उसने एक चाकू उठाया और उसको एकदम छाती पर मारा और वो वही मर गया। अब इतना बड़ा केस हो गया, 1 पैसा मर्डर नेक्स्ट डे आया। तो मेरी बहन, मेरी सहेली थी, अब वो लोगों ने तो पढ़ के वो भूल भी गए होंगे, एक दिन की न्यूज होती है फिर दूसरे दिन दूसरी न्यूज आती है, लेकिन मेरी उस मेरे फ्रेंड के पिताजी का क्या हाल हुआ। उसको तुरंत पकड़ के ले गए, मर्डर किया ना उसने, जेल में डाला, और फिर उसका कितना वो सारा दुकान खत्म, मकान खत्म, इतना सब कुछ नष्ट हो गया केवल एक पैसे के कारण। बताओ गुस्सा क्या नहीं करता है। और अगर मान लो उस ग्राहक ने कहा 13 पैसा दो, 1 पैसा देने में क्या जाता है, क्या जाता है, लेकिन उसने क्या तर्क दिया, अब सबको एक एक पैसा देता जाऊंगा तो मैं तो खाली हो जाऊंगा, वैसे ही खाली हो गया मर्डर करके। गुस्सा कहां तक पहुंचता है। तो समझदारी क्या है, समझदारी क्या है। चलो उसने गुस्सा किया और मैं उसको मैं जवाब न दूं तो वो रिएक्ट तो नहीं करेगा ना, भले बोलने दो बोलने दो बोलने दो। और उसको मैं दुआ दे सकता हूं, क्या कहूंगा, बड़ा दिल रख के, कोई बात नहीं भगवान देगा, बड़ा दिल रखो। अब वो नहीं हुआ तो देखो नतीजा, हाँ क्या रिजल्ट निकली। तो सबको दुआ दो, कोई भी आए, कोई भी आए, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, किसी को भी अपना दुश्मन मत बनाओ, सब हमारे मित्र हैं। अगर हमारे दुश्मन है तो कौन है दुश्मन, कौन है दुश्मन, ये 5 विकार बस। आज बाबा ने कहा दे अभिमान, ये सबसे बड़ा दुश्मन है, सबको गिराता है, नरक में ले जाता है, ये दे अभिमान। और ये सब जो कुछ भी होता है सब दे अभिमान के कारण ही है। इसलिए बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो, सबको आत्मा देखो। तो शुभ भावना, शुभ कामना, ये दुआ देने का तरीका है। शुभ भावना माना, शुभ भावना माना उसकी अच्छाई को देखना, उसके गुणों को देखना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, सब आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। तो हर आत्मा में कोई ना कोई गुण होगा, चाहे 99 अवगुण हो, लेकिन एक गुण जरूर होगा, क्योंकि वो भगवान का बच्चा है। इसलिए वो एक गुण को देखो कि इसके अंदर देखो ये कितना अच्छा गुण है। मैं कई बार दादी चंद्रमणि का मिसाल देती हूँ। एक बहन या मधुबन में रहती थी, बहुत बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी, लेकिन बहुत गुस्से वाली थी, और यज्ञ की पुरानी शुरू की कुमारी रूप में आई थी। अभी तो वो इतनी बड़ी हो, माना उम्र की बड़ी थी, उम्र ज्यादा थी, लेकिन बहुत गुस्सा था उसमें। थोड़ा सा कुछ टच भी किया गुस्सा करे, वो सब डरते थे उनसे, सब उनसे डरते थे, उनके नजदीक भी नहीं जाते थे। अपना खाना पकाती थी, किसी की दृष्टि भी ना पड़े उनके खाने पर। तो एक बार एक बहन को बहुत डांटा उसने, तो वो बहन दादी चंद्रमणि के पास गई, दादी को कहा दादी देखो कितना गुस्सा करती है, बहुत गुस्सा करती है। तो दादी ने कहा देखो अब इतनी बूढ़ी तो हो गई है, अब आप सोचो ये उसका ऐसा पक्का संस्कार है, इतना सहज तो जाएगा नहीं, लेकिन उसका गुण देखो ना। अभी क्या गुण देखेंगे, तो कहा देखो इतनी बड़ी आयु तो भी ये कुमारी है, कुमारी है, पवित्र है, आप उसकी पवित्रता देखो, उसकी प्यूरिटी देखो, उसने सारा जीवन कितना प्योर बिताया है, किसी पराई पुरुष पर उसकी बुरी दृष्टि नहीं गई है। अब उस नजर से उसको देखो, अब गुस्सा करती है उस नजर से क्यों देखती हो। अब दादी ने उसको चुप करा दिया, वना 99% अवगुण, पर एक गुण कौन सा था? उसकी प्यूरिटी का। तो मैं दादी के पास बैठी थी और दादी उनको ये कह रही थी, तो मैंने उसमें से कितनी माना, इतना गुण उठाया कि देखो दादी हमेशा कहती सबका गुण देखो। हम भगवान के घर में आए तो क्या थे हमारे अंदर, कितनी कमियां थी, कितने अवगुण थे। बाबा ने हमारे अवगुणों को थोड़ी देखा, बाबा ने हमारी महिमा ही की, हमारे गुण गायन किए, बच्चे तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को। इतना बाबा ने हमको इतना ऊंचा उठाया। मेरे को ये सेवा बहुत अच्छी मिली है, जब बाप दादा आते थे, अभी भी प्रोग्राम होता है तो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करती हूँ, हिंदी की टू इंग्लिश। अब इंग्लिश ट्रांसलेशन जब करते ना, एकदम उसी समय साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन करना होता है, तो जो अव्यक्त मुरली होती है, उस अव्यक्त मुरली में जो फर्स्ट सेंटेंस होता है ना, फर्स्ट सेंटेंस पहला, उसमें होता है आज बाप दादा होली हंसों को डैश डैश डैश, कई बाबा हमारे टाइटल बताते हैं, को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, सुना रहे हैं। ये वर्ब जो होता है वो लास्ट में आता है हिंदी में, आज बाबा डैश 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 बच्चों को देख रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में वो वर्ब पहले आता है, टुडे बाप दादा इज लुकिंग एट और मीटिंग, तो वो जो लास्ट में हिंदी है वो इंग्लिश में बिगिनिंग में आता है। तो हमको ट्रांसलेशन करनी होती है और मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन में वो जो वर्ब आता है वो शुरू में बोलना पड़ता है, मीटिंग और लुकिंग वॉट एवर, तो मुझे सारा लिखना पड़ता है। और इतने बाबा सुंदर सुंदर टाइटल्स देते हैं और फिर लास्ट में वर्ब देते हैं, देख रहे हैं, मिल रहे हैं, जो कि तो, और जब बाबा कहते जाते हैं और मैं लिखती जाती हूँ, इतना नशा चढ़ जाता था। मैं कौन हूँ, बाबा मुझे किस नज़र से देख रहे हैं, और नशा चढ़ता जाता था, लिखती जाती थी और फिर ट्रांसलेशन करती थी। तो शुरू से ही नशा चढ़ जाता था बाबा की मुरली ट्रांसलेट करते ही, क्योंकि बाबा हमको नशा चढ़ाते, तुम कौन हो, कोई हमें इतनी ऊंची महिमा करे तो हम क्या कहेंगे, नहीं बाबा मैं तो इसके योग्य नहीं हूं। शुरू में बाबा सब बच्चों से इंडिविजुअल मिलते थे और बाबा बहुत महिमा करते थे, लेकिन कई बच्चे ऐसे थे जो बाबा उनकी महिमा कर रहे हैं तो अंदर में सोचते थे, बाबा आप इतनी महिमा तो कर रहे हो हमारी, लेकिन मैं इसके योग्य नहीं हूँ। एक मिसाल देती हूँ, बाबा के सामने एक आत्मा आई और बाबा ने उनसे पूछा, आप अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो? बाबा प्रश्न करते हैं, आप अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो? तो उसने कह दिया नहीं। नहीं, तो बाबा ने देखो कैसे उसको सिद्ध करके बताया कि आप हो मास्टर सर्वशक्तिवान। तो फिर बाबा ने उनसे पूछा, अच्छा आप आत्मा हो? तो कहा हाँ आत्मा हूं। फिर बाबा ने कहा, आत्मा किसकी संतान है? शिव बाबा की संतान है? बोला हाँ है। शिव बाबा क्या है? अब जवाब कुछ नहीं दिया। फिर बाबा ने कहा, अच्छा शिव बाबा सर्वशक्तिवान है? बोला है। आप उनकी संतान हो? हूं। अब शिव बाबा आपका पिता सर्वशक्तिवान, तो आप कौन? आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं? फिर कहते हाँ। शुरू में नहीं कहा, क्योंकि अपने आप को थोड़ा वो कमजोर महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे बाबा के सामने बैठा, दृष्टि लेता रहा, बाबा उनको प्यार की दृष्टि देते रहे देते रहे देते रहे, और अंत में उसके ही मुंह से निकाला हाँ। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बाबा ने तो प्रश्न ही केवल पूछा। तो बाबा हमको किस नजर से देखते हैं, चाहे हम कैसे भी हैं। इसीलिए कहते हैं ना, किस बदला मत लो लेकिन बदल कर दिखाओ। अपकारी पर भी उपकार करो, ये बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। तो दुआ देना माना उनके प्रति शुभ भावना रखना, शुभ भावना माना उसकी अच्छाई को देखना, और अच्छाई को देखना और फिर शुभ कामना देना, गुड विशेस, गुड विशेस। तो गुड विशेस माना शुभ कामना, अर्थात आगे के लिए उसको जैसे दुआ दे दी, आगे के लिए आपने उसको काम शुभ कामना दे दी, मे यू पास, मे यू गो थ्रू दिस वेल, मे यू बिकम हेल्दी, तो ये जैसे दुआ दी, मे यू बिकम। तो ये जो दुआ देना, और फिर जो दुआ देता है वो दुआ उसको मिलती भी है। बद दुआ देंगे तो क्या मिलेगा, दुआ मिलेगी, क्या मिलेगा, हाँ बद दुआ ही मिलेगी। आप जो दोगे वो आपको रिटर्न मिलेगा। अच्छा, आपने उसने बद दुआ दी और आपने दुआ दी, आप कहेंगे पर मैंने तो दुआ दी फिर उसने बद दुआ ही दी। तो उस समय ये नहीं सोचो मैंने तो दुआ दी उसने बद दुआ दी, उस समय ये सोचो कि कोई पुराना हिसाब किताब चुक्त हो गया। अगर उसने बद्दुआ दी इसका मतलब कोई जन्म का पुराना हिसाब किताब था वो चुक्त हो गया, और मैंने अंदर में शुभ भावना रखी तो वो हिसाब किताब चुक्त हुआ। अगर मैं बुरी भावना रखती तो और हिसाब किताब बनता। तो हमको क्या करना है, हिसाब किताब बनाना है या चुक्त करना है, क्या करना है, चुक्त करना है। तो अभी हमने भी बुरा कहा तो हिसाब किताब तो बन गया। तो बाबा कहते हैं जबकि अभी समय है, घर जाना है, तो अभी कोई नया हिसाब किताब मत बनाओ, मत बनाओ, क्योंकि फिर वो कब चुक्त करेंगे। अगर उसने बद्दुआ दी इसका मतलब कोई हिसाब किताब था। एक बार किसी, बहुत अच्छी बात थी, बाबा ने कहा था किसने, पति ने पत्नी को थप्पड़ मारा, पत्नी ने कुछ नहीं कहा, तो बाबा के पास आई, बाबा देखो वो मुझे मारता है। बाबा ने कहा किसी जन्म ने मैं आपने उसको मारा होगा किसी जन्म में आपने उसको मारा होगा तभी वो रिटर्न कर रहा है। तो किसका दोष है, उसका दोष या आपका दोष था, क्योंकि हमने किसी जन्म में मारा होगा तो उसने मारा, तो क्या समझो मेरा हिसाब किताब चुक्त हो गया। लेकिन उसने मारा उसमें कल्याण क्या था, और आगे कल्याण क्या था, एक तो हिसाब किताब चुक्त हुआ, दूसरा कल्याण क्या था, आपका जो उसमें थोड़ा बहुत मोह होगा ना वो मोह खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको मारता है तो कहाँ आप उनको प्यार भी करेंगे, प्यार देगा तो प्यार मिलेगा ना। अगर वो मारता है तो प्यार तो इतना नहीं होगा ना, इसीलिए अच्छा है मोह नष्ट हुआ तो कल्याणकारी हुआ ना। इसलिए हमको दुआ देनी है और ये समझना है कि मेरा हिसाब किताब चुक्त हो गया। आपके आपने किसी से ऋण लिया है और वो अपना ऋण कर्जा वापस लेने आया है, मांग रहा है, और आपके पास अभी धन है तो आप कहेंगे कि क्यों आए, वैसे तो नहीं कहेंगे ना, कर्जा मैंने लिया है तो उसको वापस तो करना है तो क्यों आए हो, ये थोड़ी कहेंगे। अच्छा है, आया है, मैंने तो मुझे उसको देने जाना पड़ता, वो खुद ही लेने आया, ले लो, मेरा बोझ हल्का हो गया। तो एक होता है दुआ देना, और दुआ लेना माना कुछ ऐसा भलाई का काम करना, किसी को मदद करना। दुआएं मांगी नहीं जाती है, मुझे दुआ करो, हाँ मुझे दुआ दो, मांगी नहीं जाती है। उसके लिए कर्म करना होता है, तो अपने आप दुआ निकलती है, अपने आप दुआ निकलती है। मुझे एक किस्सा याद आता है, बचपन की बातें। तो हमारे नेबर थे, तो एक भिखारी आता था और वो रोज वो मेरे नेबर के पास जाता था, उनसे भीख मांगता था। तो रोज उनको खाना देती थी, भोजन उसके लिए खाद बनाती थी और उसको भोजन देती थी। तो रोज भोजन खाता था और वो दुआ देख के जाता था, तुम्हारे बच्चे जीते रहे, खुश रहो, ये हेल्दी स्वस्थ रहो, दुआ देते देखे जाता था। एक दिन क्या हुआ, उसको जाना था कहीं, तो खाना पकाया ही नहीं खाना पका, वो आ गया। खाना तो रोज उसको मिलता था उससे, तो जिस तो उस दिन खाना पकाया नहीं था, तो उसने कहा कि देखो आज तुम मैंने भोजन बनाया ही नहीं है, अच्छा तुम ये आटा लेके जाओ या पैसा लेके जाओ, तुम बाहर खाओ। लेकिन उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि आदत पड़ गई थी उसको, वहां से खाना मिलता था, आदत पड़ गई। तो इतने दिनों तक जो उसको दुआएं दी ना, अब उसने कहा नहीं है, तो उसको बद्दुआ देना शुरू हो गया। हाँ तुम मर जाओ, तुम ये हो जाओ, वो हो जाओ, वो हो जाओ, इतनी उसको गालियां थी। अरे एक दिन खाना नहीं दिया, लेकिन आदत पड़ गई। तो बद्दुआएं जो दी तो क्या हुआ, अब इतना समय जो दुआएं दी वो दुआएं सब खत्म हो गई ना। एक दिन खाली ऐसे किया तो दुआ खत्म। इसलिए कई बार लोग हम लोगों को कहते हैं कि आप लोग सामाजिक सेवा क्या करते हो, आप गरीबों को खिलाओ, ये करो, वो करो, वो करो। आप गरीबों को खिलाने लगेंगे या तो लाइन लग जाएगी, होता है ना ये गुरुद्वारों में होता है, लंगर लगता है, सारा दिन खाते रहते हैं और वही उनको वहीं से मिलता है, उनको कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। और यहाँ तो बाबा कहते हैं कि हाँ यही नहीं सेवा है, हमारी सेवा कौन सी है, स्पिरिचुअल सेवा है, आध्यात्मिक सेवा है, आत्माओं की सेवा है। आत्माओं की सेवा करो तो उसके जीवन में परिवर्तन आए, नहीं तो खाली खाना खिलाना ही है क्या, यही तो नहीं काम करना है ना। तो आत्माओं की सेवा, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये सच्ची सोशल सेवा है। उनके फाउंडेशन को मजबूत करना है, कैसे अथक होके मेहनत करे, अपने मेहनत की कमाई खाए, बाबा वो सिखाते हैं। तो इसीलिए बद्दुआ तो किसी की हमें नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको आलसी नहीं बनाना है, परंतु उनको सच्ची राह बताना है, उनको सिखाना है कि कैसे इन विकारों को जीता जाता है, कैसे लोभ को जीतना होता है, कैसे मेहनत करनी होती है। बाबा यही तो सिखाते हैं। इसलिए दुआ दो, दुआ लो। तो दुआएं मांगी नहीं जाती है, लेकिन दुआ कमाई जाती है, कमाना होता है दुआएं, श्रेष्ठ कर्म करके। खाली किसी को खिला पिला करके यही नहीं श्रेष्ठ कर्म है, उसका जीवन बना करके। इतने व्यसन है मनुष्यों में आज, आज रक्षाबंधन पर क्या करेंगे, राखी बांधने जाएंगे तो क्या कहते हम, बाबा ने तो हमारा जीवन ही पवित्र बना दिया, सारे विकार बाबा कहते दान में दो, आत्मा की रक्षा बाबा हमारी करते हैं। तो चलो बाबा कहते उनको कहो पवित्र बनो, चलो वो कहना मुश्किल है, तो आज तो क्या करते हैं, फॉर्म लेते हैं ना, इसमें से कोई एक विकार छोड़ो या कोई व्यसन छोड़ो। राखी बांधते समय क्या लेते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, फिर लिखेंगे सिगरेट बीड़ी तंबाकू ये वो, ये कोई भी विकार छोड़ो, कुछ भी अपनी जो कमी है कमजोरी है वो छोड़ो। तो आज जो बाबा ने कहा ना मुरली में, कहा आज की मुरली थी, तो यात्रा पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ छोड़ के आते हैं। तो बैंगन नहीं खाएंगे हम, मीट नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, कई तो वो चीज छोड़ते जो कभी खाते ही नहीं है। ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, मीट तो खाते नहीं है समझो, और वो कहेंगे मैं मीट छोड़ के आता, तो खाते ही नहीं हो तो वो क्या छोड़ना हुआ। आप वो छोड़ो जो आपको बहुत प्रिय लगता है, पर आप उसको छोड़ रहे हो, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है वो आप छोड़ो, तब कहेंगे कि हाँ सचमुच छोड़ा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो विकार जिनको हमने अपना अपने घर में बिठा दिया है, वो विकार ही हमारे दुश्मन है और उनकी जड़ है देह अभिमान। तो बाबा कहते इसको छोड़ो, कोई नहीं कहता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान, आप आत्मा हो ये तो कोई नहीं कहता है, आत्मा अभिमानी होके रहो ये कोई नहीं कहता है, और बाबा ने ये कहा है। तो एक है दुआ देना दुआ लेना, हम दुआ देते जाएं, कोई बद्दुआ दे तो भी दुआ देने में कोई हमारा खर्चा नहीं है। वो जैसे मिसाल देते हैं ना, एक गरीब आदमी था, वो एक मिठाई के दुकान में गया और उसको मिठाई मांगी, तो दुकानदार ने मिठाई तो नहीं दी लेकिन उसको गाली दे के भगाया। तो उस भिखारी ने क्या कहा, अच्छा साहब हमको मिठाई मत दो लेकिन कम से कम मीठा तो बोलो, मीठा बोलने में तो कुछ खर्चा नहीं है ना, मीठा बोलने में खर्चा है क्या, चलो माफ करो, हाथ जोड़ो माफ करो, हाँ जाओ 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 जाओ, ऐसे चिल्लाना ये तो इंसल्ट एक करना। चलो उसने कुछ नहीं कहा, कल आप एक बड़े आदमी को भी ऐसे ही करेंगे तो वो तो आपके ऊपर केस भी कर सकता है, बड़ा आदमी। अब ये भिखारी इसलिए आपने ऐसे कह दिया, तो उसको भी उस भले नहीं दो पर उस रिस्पेक्ट से तो आप भले उनको कहो उनकी माफ करो, हाँ जाओ। परंतु अगर गुस्सा है अंदर में, ये संस्कार है और हमने गुस्सा कर लिया तो किसको भी गुस्सा करेंगे, पर गुस्सा न आए, इसीलिए अगर गुस्सा किया तो बद्दुआ तो मिलेगी, अगर मिठास से बोला तो बद्दुआ नहीं मिलेगी। हम भी प्यार से बोलेंगे तो वो अपने आप चला जाएगा, और हमने गुस्सा किया तो हमने किस पर गुस्सा किया वो तो चला जाएगा। कहते हैं ना कि अगर गुस्सा करते ना तो ये उस पर गुस्सा नहीं करते हैं जिसको समझते मैं गुस्सा कर रही हूं कर रहा हूं, आप अपने आप को गुस्सा कर रहे हैं, अपने आप को दुखी कर रहे हो, क्योंकि गुस्सा करने के बाद आप एकदम मन शांत नहीं होगा, अंदर में क्या ये तंग करते रहते हैं ऐसे ऐसे, हाँ कितना बोलेंगे, तो अंदर में तो जैसे दुखी हो रहे हैं, तो किसको नुकसान हुआ, उसको तो कुछ भी नहीं, वो सुना और चला गया, उसको तो सब ऐसे ही करते होंगे। तो परंतु गुस्सा किया तो नुकसान किसको हुआ, खुद को ही हुआ ना। परंतु अगर वो संस्कार है, इसका मतलब मेरी बहुत बड़ी कमी है, इसलिए हम कहते हैं ना चरित्र धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ गया, चरित्र गया, क्योंकि विकारों के वश है क्रोध करना कोई भी विकार। इसीलिए विकार जहां है वहां दुआएं नहीं दे सकते हैं और न दुआएं मिलेगी, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मीठे बनो, मीठा बनो, मीठा बनो, हाँ मीठा 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 बनो, मीठा मीठा कहकर बाबा मीठा बना देते हैं, तो सब मीठे बन गए ना, हाँ कोई कड़वा तो नहीं है। बच्चे को भी कड़वी दवाई पिलानी होती है तो भी उसमें वो मिठास डाल देते हैं, शहद डाल देंगे ताकि वो कड़वी है, सच कही कहते हैं ना सच जो होता है वो कड़वा होता है, लेकिन उसमें मिठास डाल सकते, जरूरी नहीं कि वो कड़वा ही रहे, तो इसीलिए दुआ देना है और दुआ लेना है। हमारी दादी प्रकाशमणि जी बहुत कहती थी, दादी को कहते थे, दादी आप क्या पुरुषार्थ करती हो? तो दादी कहती थी, मेरे बस बाबा और सबकी दुआएं मुझे चला रही है, ऐसे कहती थी दादी। लास्ट दिनों में बीमार हुई थी तो दवा तो लेनी पड़ती है, तो दादी कहती थी बस 20% दवा है, 80% दुआएं वो बाबा वो चला रहे। तो दुआएं चलाती है, दवा तो नाम मात्र है। इसलिए बाबा हम बच्चों को यही कहते, यही लक्ष्य रखो, दुआ देना है, दुआ लेना है, और नए हिसाब किताब नहीं बनाने हैं, किसी को दुख नहीं देना है, और कोई देवे तो लेना नहीं है। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। एक बहुत बड़ी ऊंची स्थिति है ये, क्योंकि देवता बनना है ना, देवताएं कभी गुस्सा करते हैं, हमारी दादियां कभी गुस्सा करती थी, कई पूछते हैं बाबा गुस्सा करते थे? हाँ, बाबा कैसे गुस्सा करेंगे, बाबा तो दाता थे, बाबा के सामने जो जाए उसका तो मुंह ही बंद हो जाता था, बाबा के सामने कुछ बोल ही नहीं सकता था, इतनी ऊंची स्टेज बाबा की। हमारी स्टेज अगर ऊंची है कोई हमारे सामने भी नहीं बोल सकेगा, झुक जाएंगे, पर हमारी स्थिति अच्छी नहीं है तो अटैक करेंगे, सामना करेंगे। इसलिए बाबा कहते अंत के समय आपकी इतनी ऊंची स्थिति हो जो आपका ये शरीर न देखे पर आपको एक फरिश्ता रूप में, लाइट रूप में देखे, लाइट रूप में देखे, ऐसी आपकी स्थिति हो तो मुख से अपशब्द तो क्या, हाँ कोई दुख देने वाले शब्द तो निकलेंगे ही नहीं। तो दुआ मांगी नहीं जाती है, दुआ कमाई जाती है, कमाना होता है, मेहनत है। सब दुआ दे मुझे, सब मेरे से संतुष्ट हो, बाबा भी मेरे से संतुष्ट हो, अगर बाबा की मैं श्रीमत पर चलता रहूंगा फिर वो दुआ से थोड़ा आगे बढ़ के आशीर्वाद हो जाता है, दुआ से ऊंचा है। दुआ तो कोई भी दे सकता है, और दूसरा है आशीर्वाद। आशीर्वाद माना बड़ी आशीर्वाद देते हैं, बेटा जीते रहो, है तो वही शब्द, दुआ भी तो वही शब्द है, आशीर्वाद भी वही शब्द है, वरदान भी वही शब्द है, लेकिन कौन देता है? आशीर्वाद तो बड़ों से ही ले जाते, हाँ बड़ों के आगे जाएंगे, सिर नीचे करेंगे, आप कहेंगे सिर पर हाथ रखो, बहुत आते हैं मेरे से भी बड़ी बड़ी आयु वाले, वो भी झुक करके कहते हैं हाँ आशीर्वाद करो। हम कहते हैं बाबा आशीर्वाद करते हैं, हम थोड़ी ऐसे जैसे गुरु महात्मा की तरह सिर पर हाथ रखेंगे, हम कहते बाबा तो कहते आशीर्वाद मांगो मत, आशीर्वाद मांगो नहीं, लेकिन क्या करो, आशीर्वाद के योग्य बनो, अपने जो श्रीमद बाबा देते हैं उस पर चलो तो ऑटोमेटिकली आशीर्वाद मिल जाएगी। बड़ों की आज्ञाकारी बनते हैं तो क्या होता है, आशीर्वाद मिलती है ना। तो आशीर्वाद अगर लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, वफादार बनना पड़ेगा, फरमान बरदार बनना पड़ेगा। तो जो बाबा की श्रीमत मिलती है उस पर अगर हम चलते हैं तो बाबा की आशीर्वाद मिलती है, और बाबा की आशीर्वाद मिली मानो हम बाबा के दिल पर चढ़े, और बाबा के दिल पर यहां चढ़े तो भविष्य में राज्य तख्त पर भी चढ़ेंगे, ये निश्चित है। तो दुआएं भी लेनी है और आशीर्वाद भी लेनी है, और वरदान कैसे मिलते हैं, दाता बन जाओ, दाता। भगवान तो वरदान लुटा रहे हैं, तो हमारे मुख से भी जो शब्द निकले वो वरदानी शब्द निकले। कई लोग हम लोगों को कहते हैं ना, कभी किसको कुछ अच्छे अच्छी बातें कही होगी तो वो याद दिलाते, बहन जी आपने मुझे 20 साल पहले ये जो कहा था ना, उससे मेरा जीवन बदल गया। अब मुझे याद भी नहीं होगा क्या कहा, लेकिन मेरा जीवन बदल गया, ऐसा वरदान आपसे मिला जो मेरा जीवन ही सुधर गया। तो हमारे मुख से क्या शब्द निकलने चाहिए जो किसका जीवन बदल जाए, उसका जीवन श्रेष्ठ बन जाए, उसकी सोच ही बदल जाए। तो ऐसा हमें करना है, ठीक है। तो दुआएं भी लेनी है, आशीर्वाद भी लेनी है, और वरदान भी लेना है और देना है, यही एक्सचेंज करना है, ठीक है। चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।